नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है और आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकास के साथ साथ विरासत को संजोकर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र से औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का आह्वान किया। राज्य के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं में मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गया। वोटों की गिनती सोमवार 30 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। और प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी। गया जी जिले के बोधगया में सबसे अधिक 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने विचारों, दर्शन और ज्ञान के कारण ही हजारों वर्षों से शाश्वत बना हुआ है। आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है और इस शाश्वत दर्शन का स्रोत देश के ऋषियों, संतों और आचार्यों में निहित है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आचार्य श्री विद्यानंद जी ने अपने जीवन को केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का एक सशक्त माध्यम भी बनाया।
जिस दिव्य आत्मा की वाणी को, उनके वचनों को हम जीवन भर गुरु वाक्य मानकर उनसे सीखते हैं, जिनसे हमारे हृदय भावात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना हमें भावुक कर देता है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज के बारे में बोलने की जगह काश हमें आज भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिलता। ऐसी महान विभूति की जीवन यात्रा को शब्दों में समेटना आसान नहीं है।
श्री मोदी ने कहा कि इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देश के सांस्कृतिक धरोहरों और तीर्थस्थलों का भी विकास कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने पर भी जोर दिया।
हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेवा और मानवता के प्रति समर्पित देश है। उन्होंने कहा कि विश्व में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने विश्व को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। प्रधानमंत्री ने 9 संकल्पों पर भी जोर दिया।
मैं उन 9 संकल्पों को फिर से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला संकल्प पानी बचाने का है। दूसरा संकल्प एक पेड़ माँ के नाम। तीसरा संकल्प स्वच्छता का। चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल। पांचवा संकल्प देश का दर्शन। छठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग अपनाने का। सातवां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल का। आठवां संकल्प खेल और योग दोनों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। नवा संकल्प गरीब की मदद करना। हम इन 9 संकल्पों पर काम करेंगे तो आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी को और उनकी शिक्षाओं को भी ज्यादा सशक्त करेंगे।
राज्य के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। आज के मतदान के बाद 538 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। वोटों की गिनती सोमवार 30 जून को होगी। 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि 3 पदों पर उच्च न्यायालय के आदेश के कारण निर्वाचन स्थगित कर दिया गया है। 121 वार्ड पार्षद, 7 मुख्य पार्षद और 8 उप मुख्य पार्षद के लिए आज मतदान हुआ। देश में पहली बार बिहार में मोबाइल ऐप के जरिए ई वोटिंग हुई, जिसके लिए 50,000 से ज्यादा मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें 70% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल नगर पंचायत की विभा कुमारी पहली ई वोटर बनी। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई वोटिंग के लिए समय निर्धारित किया गया था। बिहार के बाहर के लोगों ने भी ऐप के जरिए ई वोटिंग किया। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ सभी मतदाताओं की पात्रता की पुष्टि के लिए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। इसमें 77,800 से अधिक बीएलओ के साथ साथ नए मतदान केंद्रों के लिए लगभग 20,603 अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पुनरीक्षण के दौरान 1,00,000 से अधिक स्वयंसेवक भी विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग व्यक्तियों, गरीबों और अन्य कमजोर समूहों की मदद करेंगे। निर्वाचन आयोग ने नए गणना फॉर्म की छपाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही बिहार की 243 विधानसभा क्षेत्रों के 7,89,00,000 मतदाताओं हेतु सभी घरों में जाकर वितरण भी शुरू कर दिया है। नए गणना फार्म को भौतिक फार्म के साथ साथ ऑनलाइन भरना भी सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। यह पूरे देश में 94 करोड़ नागरिकों तक पहुंच चुकी है। देश की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2019 में 25% से बढ़कर 2025 में 64% हो गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लोगों को नया जीवन दे रही है। गरीब परिवार से आने वाले पटना के ज्ञानेंद्र किडनी के रोग से ग्रस्त थे और आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका सफल इलाज हुआ। इस योजना के तहत पटना में ही उनका बिना पैसे का इलाज हुआ। ज्ञानेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसके लिए आभार जताया है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बिहार में अब तक 4 करोड़ लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं, जिसके तहत 5,00,000 रुपए तक के इलाज की सुविधा लाभार्थियों को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर किसी भी अन्य संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया है। नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि प्रस्तावना वह आधार है जिस पर संविधान विकसित हुआ है।
The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we the people of India, except Bharat. Nobody's constitution's preamble has undergone change. And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which constitution has grown. Preamble is the seed of the constitution. It is soul of the constitution.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 9 चयनित 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर पटना के बापू सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 2,00,000 से अधिक पदों का सृजन कर तेजी से पुलिसकर्मियों की बहाली की जा रही है।
पहले तो मात्र 42,481 था, अब संख्या हो गई है 1,10,000, तो अभी हम लोगों को और बढ़ाना है। और आप जानते हैं कि हमने 2 साल पहले ही कह दिया कि भाई अब उसकी संख्या पुलिस में होनी चाहिए 2,29,000। अब इसके लिए हमने अनुरोध किया कि सब जगह काम करिए, तो इन लोगों ने जो कुछ भी करना शुरू किया तो हर बार हम कह रहे थे जरा तेजी से करिए। अब उसमें इन लोगों ने यह तय किया है कि 55,000 अलग ढंग से ये करेंगे, तो हमने कहा कि भाई 55,000 जो अलग करना है तो जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है हम इनसे कहेंगे कि भाई क्यों नहीं तेजी से करना है।
बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं से मतदान का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर मतदाता सूची के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री जायसवाल ने कहा है कि मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है।
तेजस्वी यादव जी को, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को मैं एक सुझाव देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है अभी मतदाता पुनरीक्षण का, एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि इलेक्शन कमीशन उसमें क्या क्या करना चाहती है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती है कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम उस लिस्ट से हट जाए। इलेक्शन कमीशन चाहती है कि जिनका नाम पूरे देश में दो तीन जगह मतदाता सूची में है तो वो इस बात को साबित करे कि भाई हम किसी दूसरे जगह हमारा मतदाता सूची में नाम नहीं रहा, तो पारदर्शिता लाना चाहती है इलेक्शन कमीशन। तीसरा है कि एक परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उसका एक ही बूथ पर वोटिंग हो।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजद की मानसिकता संविधान विरोधी है। श्री सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं।
राजद का मानसिकता संविधान विरोधी, संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान शत प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहता है तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बूथ से जिन निकालते थे उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। श्री कुशवाहा ने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार निश्चित है।
असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, तो कहीं से कोई चीज आती है उसको मुद्दा बनाने का प्रयास लोग करते हैं। राजनीतिक लाभ कैसे चुनाव में मिल जाए इस दृष्टि से बयानबाजी करते हैं। सच जो कुछ भी बोल रहे हैं विपक्ष के लोग उससे बिल्कुल अलग है, सच्चाई कुछ और है। इलेक्शन कमीशन की ओर से तो समय समय पर वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम पहले भी होता रहा है और इस बार भी हो रहा है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने भ्रष्टाचार और अपराध का जो दौर देखा है उसे वे अभी तक नहीं भूले हैं। श्री पासवान ने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।
जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें, और उसको याद करना जरूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल।
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक 58 मिलीमीटर बारिश गया जिले के बोधगया में दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज गया, नवादा, जमुई, बांका जिले के एक दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है।
अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 29 जून 2025 राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर गरज, बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के कैमूर और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकास के साथ साथ विरासत को संजोकर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र से औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का आह्वान किया। राज्य के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। वोटों की गिनती सोमवार 30 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। और प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी। गया जिले के बोधगया में सबसे अधिक 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।